आकांक्षा के चिल्लाने की आवाज सुनकर बाहर खड़े राजवीर जी और उनके साथ दो मौजूद लोग घबरा गए। अक्षु, क्या हुआ?
मेरी अक्षु, वो ठीक तो होगी ना?
राजपुरोहिनी, राजपुरोहित जी कहाँ हैं? प्लीज उन्हें बुलाकर लाइए। राजवीर जी चिल्लाते हुए कक्ष की ओर दौड़े। उनमें से एक आदमी राजपुरोहित जी को बुलाने चला गया, जबकि दूसरा आदमी राजवीर जी के साथ कक्ष के अंदर गया। राजवीर जी को देखते ही आकांक्षा खड़ी हुई और रोते हुए उन्हें गले लगा लिया।
दादू, मुझे यहाँ नहीं रहना, यहाँ से चलिए ना, मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा,
आकांक्षा ने रोते हुए कहा। हम एक बार राजपुरोहित जी से मिल लें, उसके बाद देखते हैं, राजवीर जी ने प्यार से उसे सहलाया। शांत हो जा अक्षु और बैठ यहाँ, उन्होंने जैसे तैसे करके आकांक्षा को बिठाया। वहां मौजूद दूसरे आदमी ने उसकी तरफ पानी का एक ग्लास बढ़ाया। आकांक्षा अभी भी उन सबके बारे में सोचकर अंदर से घबराई हुई थी। पानी पीने के बाद भी उसे बेहतर महसूस नहीं हो रहा था। थोड़ी ही देर में राजपुरोहित जी उस आदमी के साथ वहां आ चुके थे। उनके साथ त्रिशान और जानवी भी मौजूद थे। मुझे इनसे अकेले में बात करनी है श्रीमान, कृपया करके आप सब यहां से बाहर चले जाएंगे, राजपुरोहित जी के कहते ही बाकी के लोग बाहर जाने लगे। राजवीर जी का बाहर जाने का मन नहीं था। त्रिशान और जानवी जैसे तैसे समझाकर उन्हें बाहर ले गए। डरो मत बेटी, जो भी हुआ है वो सब बिना छुपाए सच सच बताओ, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगा, उन सबके जाते ही राजपुरोहित जी ने कहा।
मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा राजपुरोहित जी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। पहले वो अजीब अजीब सपने आना और अब तो ऐसे लग रहा है कि मेरी दुनिया ही खत्म होने वाली है, आकांक्षा ने घबराई स्वर में कहा।
आकांक्षा की आंखों में आंसू थे। उसकी बात सुनकर राजपुरोहित जी ने गंभीर होकर कहा, सिर्फ तुम्हारी दुनिया ही नहीं बल्कि हम सबकी दुनिया, ये अच्छाई खत्म होने वाली है आकांक्षा। उनकी बात सुनकर आकांक्षा चौंक गई। क्या अब भी तुम सच को छुपाना चाहती हो? जैसे ही राजपुरोहित जी ने कहा, आकांक्षा उनकी तरफ हैरानी से देखने लगी। उसने आगे कुछ नहीं कहा। उसे चुप देखकर राजपुरोहित जी फिर बोले, हम जानते हैं कि तुम कुछ छुपा रही हो और ये भी जानते हैं कि क्या छुपा रही हो। हमें अच्छा लगेगा कि अगर तुम अपने मुंह से सच बताओगी तो।
मैंने उसे नहीं मारा, मैं उसे कैसे मार सकती हूँ राजपुरोहित जी, वो बुरा नहीं है, उसके खुद के साथ धोखा हुआ था, उसके साथ रहते रहते मेरे दिल में उसके लिए एक जगह बन गई थी, कहीं ना कहीं वो भी मुझे चाहने लगा है, ऐसे में मैं उसे मारती तो फिर उसे ये लगता कि एक बार फिर उनके करीबियों ने उन्हें धोखा दिया। ऐसा तब होता आकांक्षा जब वो एक इंसान होते, वो एक इंसान नहीं है, तुम तो समझ भी नहीं सकती कि पिछली कई सदियों से वो किस दर्द का सामना कर रहे हैं, राजपुरोहित जी ने गंभीर स्वर में कहा। क्या रिवांश इस दुनिया के लिए कोई खतरा है? राजपुरोहित जी ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा। हाँ, लेकिन वो खुद इस सच से अनजान है आकांक्षा, तुम्हें उसे खत्म कर देना चाहिए था। उनकी बात सुनकर आकांक्षा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लग रहा था कि जंगल के पिशाचों के मरने के बाद अब दुनिया से बुराई का नाश हो चुका था। वहीं राजपुरोहित जी के मुंह से रिवांश द्वारा दुनिया को खतरा होने की बात उसके लिए किसी झटके से कम नहीं थी। मैं उसे कैसे मार सकती हूँ? आकांक्षा ने नम आंखों से कहा। क्या कोई और तरीका नहीं है राजपुरोहित जी? अब तो उसे मारने का वक्त भी बीत चुका है और इस मुसीबत में कैसे टाला जाए इसका पता मुझे भी नहीं। मेरी आखिरी उम्मीद तुम ही हो आकांक्षा, अब बताओ कि तुमने अपने सपनों में क्या क्या देखा, आकांक्षा ने जवाब में कहा। मुझे बाकी के सपने तो काफी नॉर्मल लगे, या यूं कहूं तो उनमें नॉर्मल तो कुछ नहीं था, लेकिन उन सबको मैं पहले महसूस कर चुकी हूँ। उनमें सबसे अजीब सपना ये था कि मैंने खुद को रिवांश के साथ बिलासपुर के महल में पाया। मैंने अपने सपने में वो सब भी देखा जब रिवांश के दोस्त उससे धोखे से शैतान को जागृत करवा रहे थे। लेकिन ये सब तो बीत चुका है ना राजपुरोहित जी, आप भी जानते हैं कि मैं सिर्फ पास्ट ही देख सकती हूँ, ये सब घटनाएं भी भूतकाल में हो चुकी है, शायद तभी मुझे फिर से दिख रही हैं। आकांक्षा की बात सुनकर राजपुरोहित जी कुछ देर के लिए आंखें बंद करके सोचने लगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली और कहा, या ऐसे भी हो सकता है कि भविष्य इन घटनाओं को एक बार फिर दोहराएगा, इस बार उन सब घटनाक्रम में तुम भी मौजूद हो सकता है तुम्हें उन दुर्घटनाओं को रोकने का कोई मौका मिले। आकांक्षा, लेकिन मैं कैसे? राजपुरोहित जी, जब ये सब घटनाएं हुई थी तब तो मैं पैदा ही नहीं हुई थी, क्या मुझमें ऐसी कोई शक्ति आ गई है जिससे मैं पास्ट में जा सकती हूँ? राजपुरोहित, अभी इसके बारे में मैं निश्चित होकर तो नहीं कह सकता, लेकिन क्या तुम मेरी रिवांश से बात करवा सकती हो? रिवांश से मिलवाने की बात सुनकर आकांक्षा चुप हो गई। उसे अंदर ही अंदर ये भी डर लग रहा था कि कहीं राजपुरोहित जी रिवांश को नुकसान न पहुंचा दे। घबराओ मत, उसे सिर्फ तुम ही मार सकती हो, अगर उस बुराई का नाश हम लोगों द्वारा संभव होता तो अब तक वो यहाँ मौजूद नहीं रहता, राजपुरोहित जी ने उसके चेहरे के भाव को पढ़ते हुए कहा। आकांक्षा, मेरे पास उससे कम्युनिकेट करने का कोई तरीका नहीं है, हम दोनों अक्सर रात को हमारे घर के बाहर मिलते थे, प्लीज आप इस बारे में दादू को कुछ मत बताइएगा। नहीं बताऊंगा, मैं राजवीर जी से बात करके तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जाने का कहता हूँ, कहकर राजपुरोहित जी वहां से जाने लगे। लेकिन तभी आकांक्षा ने उन्हें पीछे से आवाज दी तो उनके कदम वहीं रुक गए। राजपुरोहित जी, आपको कैसे पता कि ये दुनिया खत्म होने वाली है या रिवांश इस दुनिया के लिए खतरा साबित हो सकता है? इस बारे में आपको त्रिशान ने बताया क्या? वो कह रहा था कि उसके पूर्वज भी इस तरह की कुछ बातें कर रहे थे। त्रिशान, वही जो हमारे साथ आया है, वो लड़का एक मायावी भेड़िया है। शायद आपको अभी मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन अगर इस दुनिया में वैम्पायर है तो मायावी भेड़िए भी होंगे ही। आकांक्षा की बात सुनकर राजपुरोहित जी मुस्कुराने लगे। हालांकि हमें उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, वो सबकी बातें छुप छुप कर सुनता है, आकांक्षा ने कहा। और ये बात तुम हमें क्यों बता रही हो? अब तक तो तुमने हर एक बात हमसे छुपाई, और अब एक ऐसे लड़के के बारे में बता रही हो जिस पर तुम्हें भरोसा नहीं है और उसके पास कुछ मायावी शक्तियां भी हैं, राजपुरोहित जी ने पूछा। आकांक्षा ने जवाब देते हुए कहा, हो सकता है वो लड़का भी हमारे लिए कोई खतरा हो। वो दिखने में तो बहुत मासूम लगता है, लेकिन पता नहीं उसकी हरकतों से उस पर कुछ विश्वास नहीं होता। आप चलिए, मैं आपको उससे मिलवाती हूँ। राजपुरोहित जी ने कुछ नहीं कहा और आकांक्षा के पीछे पीछे आ गए। बाहर त्रिशान और जानवी खड़े थे। ये देखिए राजपुरोहित जी, ये है वो लड़का। आप इससे पूछिए कि इसके दिल में क्या चल रहा है जो ये छुप छुप कर सबकी बातें सुनता रहता है, और इसे कैसे पता कि ये दुनिया खत्म होने वाली है, आकांक्षा ने बाहर आते हुए कहा। जानवी ने उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए आगे बोला, बिल्कुल सही कहा अक्षु ने, ये बहुत अजीब है। ऊपर से अभी थोड़ी देर पहले इसने मेरा हाथ, जानवी बोलते बोलते रुक गई। क्या मेरा हाथ? अपनी बात तुमने पूरी क्यों नहीं की? हाँ हाँ बताओ सबको कि तुमने खुद अपना हाथ मेरे हाथ में दिया था और मुझसे ये पूछा था कि। खैर छोड़ो, मैं क्या शक्ल से तुम लोगों को चोर डाकू नजर आता हूँ जो तुम लोगों को अब तक मुझ पर विश्वास नहीं हुआ, त्रिशान बोलते हुए राजपुरोहित जी की तरफ मुड़ा और अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा। राजपुरोहित जी, अब आप ही बताइए, क्या मैं आपको शक्ल से मासूम नहीं लगता? राजपुरोहित जी ने हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, तुम शक्ल से ही नहीं बल्कि दिल से भी बहुत मासूम हो त्रिशान। जिसकी परवरिश माता रानी के मंदिर में हुई हो, उसके दिल में कपट हो भी कैसे सकता है? राजपुरोहित जी की बात सुनकर आकांक्षा और जानवी हैरानी से त्रिशान की तरफ देखने लगे।
इस तरह हैरान मत हो, हम त्रिशान को पहले से जानते हैं और हमने ही इसे वहां भेजा था। लेकिन ये बात तुम दोनों ने बिल्कुल सही कही, ये इसकी बहुत बुरी आदत है कि ये चोरी छुपे दूसरों की बातें सुनता है।
वेरी बैड दादू, अब क्या आप भी इन दोनों की तरह शुरू हो गए,
त्रिशान ने मुंह बनाते हुए कहा। बुरी आदत को बुरा ही कहा जाएगा। राजपुरोहित जी त्रिशान के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और वहां से चले गए। उनके जाते ही आकांक्षा और जाह्नवी दोनों उसकी तरफ गुस्से से घूर रही थीं।
क्या तुम दोनों मुझे ऐसे कैसे क्यों देख रहे हो, मानो अभी खा जाओगी,
बोलते हुए त्रिशान उनसे कुछ कदम दूर हट गया।
वो इसलिए क्योंकि तुमने हमसे सच छुपाया था,
आकांक्षा ने गुस्से से जवाब दिया। तुम पहले भी बता सकते थे कि तुम राजपुरोहित जी के यहाँ से आए हो।
मुझे दादू ने मना किया था, त्रिशान ने जवाब दिया।
जाह्नवी, लेकिन त्रिशान मुझे एक बात समझ नहीं आई, तुम तो हमारे कॉलेज में तब से हो ना जब से आकांक्षा और मैंने वहां पर एडमिशन लिया है, तब तो आकांक्षा रिवान से भी नहीं मिली, फिर तुम, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुमने कहा था कि तुम आकांक्षा के शरीर से आ रही वैम्पायर की स्मेल से रिवांश तक पहुंचे हो, क्या राजपुरोहित जी पहले से जानते थे कि आकांक्षा उस जंगल तक पहुंचने वाली है? अगर उन्हें पहले से पता था तो उन्होंने ये पहले क्यों नहीं कहा कि रिवांश को मारना जरूरी है? जाह्नवी के इतने सारे सवालों ने त्रिशान को हैरत में डाल दिया। इन सब सवालों के जवाब से तो वो खुद बेखबर था। इन सब के बारे में तो मुझे भी नहीं पता, अगर दादू पहले से इन सब के बारे में जानते थे तो उन्होंने डायरेक्ट आकांक्षा से बात क्यों नहीं की, जबकि उन्हें तो अच्छे से पता था ना कि तुम शिमला में रह रही है? त्रिशान असमंजस की स्थिति में खड़ा था। राजपुरोहित जी ने कहा कि ये दुनिया खत्म होने वाली है और ये होना पहले से तय है। अगर ये होना पहले से तय है तो मैं उसे कैसे रोक सकती हूँ? जाह्नवी के बाद आकांक्षा के मन में कई सवाल हो गए थे। उन तीनों के सवालों के जवाब अगर कोई दे सकता था तो वो थे राजपुरोहित जी। तीनों ने उनसे मिलने का निश्चय किया, लेकिन जैसे ही वो उनके कक्ष तक पहुंचे, उन्हें ये कहते अंदर जाने से रोक दिया गया कि राजपुरोहित जी तपस्या में लीन हैं। अब उन तीनों के पास इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था।